ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण भाग्यशाली कृष्ण बलराम मंदिर के भक्तों, श्रीमद् भागवत के प्रातःकाल के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक महाजन महाभागवत भक्तराज प्रहलाद महाराज प्रथम बाल सबसे शक्तिशाली असुर वर्य असुर राज जो उनका पिता भी था, उसके पूछने के ऊपर जो जन्म जात वैष्णव है, नरसिंह पुराण में प्रहलाद महाराज को जन्म जात वैष्णव का है, जन्म से ही वैष्णव है और वैष्णव निर्भव है, निर्भय होता है, भय नहीं होता उसको, निर्भय नहीं होता वैष्णव। तो प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में यहां से अमेरिका जाने का साहस नहीं करते। तो निर्भयता से प्रश्न का उत्तर अति उत्तम वैष्णव पद्धति से दिया है। इसको मानते हैं के महाजन की शिक्षा है। कितना बड़ा साहस होगा छोटे 5 वर्ष के बालक को जानते हुए कि मेरा पिता भगवान विष्णु गोविंद ना राम नारायण से ईर्ष्या करता है, फिर भी उसके सामने भगवान के शरण लेने का घोषणा करना कितना बड़ा साहस होगा। तो ये श्लोक तो पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी एक बार पाठ कर लेते हैं। श्री प्रहलाद उवाच। तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहा हित्वात्मपातं ग्रह अंधकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रये प्रणाम महाराज। एक महाजन की शिक्षा है तो हरेक शब्द को अलग अलग दृष्टिकोण से इसका रसास्वादन 4-5 दिन से करते आ रहे हैं। कल परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज, भगवान का शरण लेना चाहिए इसके ऊपर, और कृष्ण का शरण लेना चाहिए जो समर्थ है, जो महावदन्य है, आश्रित रक्षक है, उसका शरण लेना चाहिए। ये पहली बार प्रहलाद महाराज की अपने पिता के सामने इतनी बड़ी साहस से भगवत शरणागति का उत्तर है। साधु किसको आप मानते हैं? साधु मानने को दूसरा शब्द भागवत में बार बार आता है, श्रेय क्या है, आत्यंतिक श्रेय क्या है। साधु किसको मानते हैं अथवा आत्यंतिक श्रेय क्या है, परम कल्याण का साधन क्या है। आशा ये थी हिरण्यकश्यपु के 5 साल का बच्चा है, कोई ऐसे कहेगा खिलौना ले दो, यही सबसे दुनिया में अच्छी बात है, और क्या है। बच्चा 5 साल का क्या कहेगा, कोई खाने के लिए चीज ले दो, नए कपड़े ले दो। लेकिन उन्होंने जो बात की उससे इस बार तो हिरण्यकश्यपु हंस पड़ा, क्रोधित नहीं हुआ, अंदर में हुआ, परंतु फिर भी पुत्र के स्नेह से हंस पड़ा। तो कहते हैं कि साधु मैं उसको मानता हूं असुर वर्य, असुरों में वरिष्ठ श्रेष्ठ, असुरों में पूजनीय। तब बनोगे जब हरि का शरण लोगे, नहीं तो असुर ही तुम्हारा अपमान करेंगे। असुर वर्य शब्द की परिभाषा इस प्रकार से की है कुछ आचार्यों ने। देही नाम सदा समुद्विक धियान, देही नाम देहीधारी को, जिसको शरीर है उसको सदा के लिए सम्यक उद्विघन होता रहता है। सम्यक उद्विघन का मतलब पूरी तरह से परेशानी संसार में सदा होती रहती है। कहां धियान, उसी बुद्धि विचलित रहती है, मन परेशान रहता है, सदा दुखमय होता है, चिंता में होता है। बोला क्यों होता है? असत ग्रहण, असत ग्रह, असत को ग्रहण किया है, दुराग्रह है। ये ग्रह जो है ना, ये नव ग्रह से भी भारी है असत ग्रह। असत को ग्रह किया है, ग्रहण किया है। असत क्या है? जो भगवान से अलग है वो सब असत है। भगवान सत है, भगवान से भिन्न जो कुछ है सब असत है। और यहां असत प्रहलाद महाराज किसको मानते हैं? मैं और मेरा। असत ग्रह का मतलब है मैं और मेरा। जो मैं मेरा संसार में करता है वो असत में, असत में ग्रस्त है, अथवा असत ने उसको घेर लिया है, अथवा उसका दुराग्रह है। तो मैं ही मेरे, मैं और मेरे को ही असत ग्रह कहते हैं। बोला किसको ज्यादातर मैं मानता है संसार में? तो कहते हैं ग्रह अंधकूपम, अंधा कुआं जो घर गृहस्थी का है ना, वही असत ग्रह, उसी को मैं और मेरा मानता है। वो है कैसा? हित्वा आत्म पातम, हित्वा आत्म पातम, ग्रहाद हित्व आत्म पातम। उस वो असत है घर गृहस्थी, उसको त्याग दो, क्योंकि वो आत्म पातम, आत्मा का पतन करता है। कहां गिराता है? अंधकूप में। तो जाए कहां? वनम। संभत विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं वन में जाने से पहले भी घर में त्याग, गृहस्थी से त्याग करके फिर वन में जाना, नहीं तो वन में जाकर भी घर गृहस्थी के विचार बना रहेगा। पहले त्याग करो फिर जाओ। ये सब लोग आते हैं, प्रभुपाद जी ने लिखा है कि हमने लिखा इस तात्पर्य के अंत में लिखा है कि वृंदावन में सब आओ। हमने देखा है बहुत से वृंदावन में आए हैं लेकिन घर को अभी तक आसक्ति छोड़ के नहीं आए। सुबह से 10 बार घर में फोन करते हैं, काम चलता रहता है। तो चक्रवर्ती पाद जो कह रहे हैं कि पहले अनासक्त होके फिर वन में जाओ। बोला वन में होगा क्या? वन में जाके करो क्या, हरि का शरण लो। ये बात ध्रुव महाराज को उसकी मां ने कहा कि भगवान के पास जाओ। बोला वन काम, भगवान कहां मिलेगा, बोला वन में मिलेगा। वन एकांत का स्थान है, तो वन में भगवान कैसे मिलेगा। अब आज का जो हमारा वैसे सत्संग का विषय है हरि आश्रय, भाई उपदेश क्या दिया, हरि का आश्रय लो। मुख्य उपदेश है हरि का आश्रय, हरिम आश्रय, हरि का आश्रय लो। हरि का आश्रय लो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो भगवान का आश्रय कैसे लिया जाए। स्वयं प्रहलाद महाराज जो अपनी प्रार्थना नरसिंह देव को करते हैं, उस प्रार्थना के पूर्ण आहुति में एक बहुत अच्छा श्लोक कहते हैं जो हरि आश्रय का सूचक है। वो है 50वां श्लोक, 7950। तत्ते अर्थम मां नमः, तत्ते इसलिए, अर्थम अर्थतम, अर्थ अर्थर अर्थतम, सबसे उत्तम जो पूजनीय है। नमः स्तुति कर्म पूजा, छह अंग यहां भक्ति के, छह अंग लिखे हैं। ये छह अंग भक्ति के द्वारा भगवान का शरण लो। ये प्रहलाद महाराज अपने ही वचनों में नरसिंह देव को कहते हैं, तत्ते अर्थतमा नमः स्तुति, नमस्कार करना, स्तुति करना, कर्म पूजा भगवान की, अर्चा विग्रह की पूजा करना, कर्म स्मृति और भगवान का स्मरण करना, चरण और चरण यो हो, फिर श्रवण करना कथायाम, भगवान की कथा का, संग सेवया त्वयी, भगवान आपकी सम्यक सेवा करना, विनेति षड अंगाय किम भक्तिम जनह परम हंस गतो लभेत। जो परमहंस की गति है वो प्राप्त होगी, हरि की प्राप्ति होगी ये छह अंग की भक्ति करने से। तो ये प्रहलाद महाराज की छह अंग भक्ति का वर्णन है। अब इसमें अगर मुख्य अंग ले ले श्रवण करने को, तो कोई सुनाएगा तब श्रवण करेंगे ना, तो सुनना किससे चाहिए। तब शरणागति के लिए एकमात्र साधन, उसका वर्णन 11वें स्कंद के 3रे अध्याय के 21 और 22 श्लोक में है। शरणागति भगवान की लेनी है तो उसके लिए ये दो श्लोक, इसका हम पाठ करते हैं। भगवान की शरणागति के लिए 11:3, 21 और 22। हरे कृष्ण आ गया। शरणागति कैसे लेनी है, पहले लेनी क्यों है, लेनी क्यों है, प्रहलाद महाराज ने बताया क्यों लेनी है। असद को ग्रह किया है, अंधकूप में पड़े हैं, कोई अंधकूप में निकला है, सुख भोगा है, ऐसा कोई उदाहरण है। ययाति महाराज ने अंधकूप से किसको निकाला, एक तो निर्ग अंधकूप से निकला पड़ा हुआ था जिसको भगवान ने, भगवान के बच्चों निकाला, अंधकूप में निर्ग पड़ा था और देवयानी गिरी थी अंधे कूप में, बाहर निकली तो सुख मिला, अंधे कूप से बाहर तो निकले ना, तो अंध कूप में गिरते हैं, इसका मतलब फिजिकली गिरते हैं। एक महात्मा ने ये दो उदाहरण लिखे हैं इसी श्लोक के तात्पर्य में। तो शरणागति का साधन क्या है, तस्माद् गुरुम प्रपद्ये जिज्ञासम श्रेय उत्तमम, वहां साधु है या श्रेय है। इसलिए जो जिज्ञासु है, जो अपना दुख निवृत्ति संसार के उद्विघन से मुक्त होना चाहता है, सदा उद्विघ्न धिया से मुक्त होना चाहता है, उसको जिज्ञासु को अपने उत्तम श्रेय के लिए गुरु के शरण में जाना चाहिए। गुरुम प्रपद्ये, गुरु के शरण में जाता है। और गुरु के लक्षण, शिष्य का लक्षण क्या लिखा? जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। और गुरु का लक्षण है पहले शाब्दे परे, शाब्द का अर्थ है वेद को पढ़ा, वेद को जानने वाला ब्रह्म वेद, और परे भगवान को जानने वाला, परमात्मा को जानने वाला, भगवान को जानने वाला। ये अगर होगा तो शिष्य के शंकाओं का समाधान करेगा। शास्त्र में अगर निष्णात होगा, अच्छी तरह से शास्त्र को अध्ययन किया होगा, तो गुरु के समस्या का समाधान करेगा, शंका का समाधान करेगा, वो अति आवश्यक है। और फिर है निष्णातम ब्रह्मणे, केवल किताबों का ज्ञान नहीं है, शास्त्र ने उसका अनुभव भी होना चाहिए। अनुभव अपने शिष्य को भगवान के शरण में ले जाने में सहायता करेगा। अनुभव के बिना संशय का समाधान कर भी दे शास्त्र से, परंतु अनुभव नहीं होगा तो भगवान की प्रेम भक्ति जो परम लक्ष्य है उसमें आगे नहीं बढ़ा पाएगी। और तीसरा लक्षण है उपशम आश्रयम। उपशम का मतलब है उस स्वयं ने संसार के भोग को त्यागा हो, इसलिए उपदेशामृत का पहला श्लोक ही गुरु की परिभाषा है। गुरु का सिद्धांत जो है, गुरु कहां का है, क्या रंग है, क्या देश है, ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है कि गुरु का कहा जाए कि गुरु का लक्षण क्या होना चाहिए, गुरु का अस्तित्व कैसा होना चाहिए। वाचो वेगम क्रोध मनस वेगम उपस्थ उद्र वेगम एतान वेगाम जो विषय धीरा। ये जो शब्द है यहां उपशम का अर्थ है, ये छह वेग को जिसने जीत लिया है इसका अर्थ ये निकलना चाहिए, जो छह वेगों को सह चुका है। और आश्रयम, जिसने भगवान का आश्रय लिया है, तो जिसने आश्रय लिया है वो हमको आश्रय दिलाएगा ना। तो भगहरि के आश्रय लेने के लिए वन में साधु का संग करना है, हरि कथा का श्रवण करना है। यहां तक भी वन में जाते हुए ध्रुव महाराज को नारद ने कहा कि भगवान का विग्रह बना के उसकी पूजा करना। ध्रुव महाराज भगवान का विग्रह बना के पूजा कर रहा था, ऐसे कर रहा था महाराज, उसको विग्रह बजाने के लिए कहा था ना नारद जी ने, एक मिट्टी का विग्रह बना के उसकी पूजा करना। पर कोई विग्रह पूजा का तो निर्देश किया था। और प्रहलाद महाराज ने जो छह अंग भक्ति स्वयं वो पूर्ण आहुति का श्लोक है उनकी प्रार्थना का, जिसमें हरि की पूजा का, हरि का अर्चन है, अर्चना है, उसमें सुमरण है और श्रवण है और परिचर्या है। तो ये जो श्लोक है ये शरणागति के लिए जिज्ञासा करनी चाहिए, गुरु के आश्रय में जाना चाहिए, जो शब्द ब्रह्मणे निष्णात हो, और उपशम। इसके ऊपर आचार्यों ने बहुत टीका लिखी है, सब आचार्यों ने इसके ऊपर अति महत्वपूर्ण और सुंदर टीका लिखी है। और दूसरा श्लोक इसके उपरांत वाला 22वां जो है वह तत्र, तो गुरु के पास जाके करे क्या? तब भगवत गीता का गुरु के शरण लेने का श्लोक पढ़ लेते हैं, कौन सा है? तस्माद, कौन सा श्लोक है भगवत गीता का? तद विधि प्रणिपातेन, तद विधि का मतलब भगवान के शरण लेने की विधि। प्रणिपातेन प्रकृष्टेन रूपेन पातेन, पूर्ण रूप से शरण लेना, इसका अर्थ यह है कि भगवान का शरण लेने का तात्पर्य है भगवान के प्रिय भक्त का शरण लेना। श्री कृष्ण कहते हैं जो कहता है मैं कृष्ण का भक्त हूं उसको मैं जानता नहीं हूं, जो कहता है मैं कृष्ण के भक्त का भक्त हूं उसको मैं पहचानता हूं। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो सीधा कह दिया, गोपी भरतहु पद कमलयोर दास 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 अनुदास, तो भगवत हरि शरणागति के लिए हरि भक्तों की शरणागति। तो प्रणिपात है ना, फिर करे क्या जाके, शरण ले रहे नहीं, परिपर्शनेन। परिपर्शनेन का अर्थ है कि भगवत प्राप्ति का प्रश्न करे, भगवत प्रेम को उदय करने का प्रश्न करे, भगवत भक्ति का प्रश्न उठाए, पूछे क्या। गुरु से संसारी बात नहीं, परे शब्द का मतलब है ट्रांसेंडेंटल इंक्वायरीज, दिव्य जिज्ञासा करें। और क्या करें, सेवया, तीन बातें हैं, जिज्ञासा, शरणागति और सेवा। उपदेश उपदेशंति ते ज्ञानम, ज्ञानी नाम तत्व दर्शन है। वो ज्ञानी नाम तत्व दर्शन का अर्थ है शाब्दे ब्राह्मणे निष्णात, वो जानता है सब और वो आपको दिखाएगा। उपदेशंति का हम अर्थ कभी अपनी मन से करते हैं, आपको ऊपर उठा के दिखा देगा। जैसे छोटा बच्चा यहां आता है, देख नहीं सकता है भगवान को ना, तो उसकी माता पिता उठा के कहते, वो देखो भगवान है। ये है ऊपर उठा के भगवान को दिखाना, उपद इक्षंति, ऐसे कर लो तो भगवान को दिखा देगा आपको। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसे करते रहेंगे तो एक दिन साक्षात भगवान का आमने सामने दर्शन होगा। तो जाके गुरु से सीखना क्या चाहिए, तत्र भागवतां धर्मान साक्षात, वहां भागवत धर्म सीखना चाहिए, क्योंकि भागवत धर्म शरणागति का धर्म है। भागवत धर्म शरणागति का धर्म है। ज्ञान तो स्वयं सतोगुण में है, उसमें तो अपना अहंकार है, उसमें शरणागति तो है ही नहीं। ज्ञान सतोगुण की वृत्ति है, और ये जो भक्ति है, भागवत धर्म है, ये गुणातीत है। जाके भागवत धर्म सीखना चाहिए, क्या समझकर, गुरु आत्म देवतम, गुरु आत्म देवता। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु आत्म देवता, मेरे लिए तो मेरा पूजनीय सर्वस्व गुरु है, और मिलेगा क्या, उसको संतुष्ट करेंगे तो हरि संतुष्ट हो जाएगा। पूरा श्लोक तो बहुत लंबा चौड़ा तात्पर्य है, तत्र भागवतां धर्मान शिक्षेत गुरुआत्म देवतः अमायया अनुवृत्त्यात् यैस तुष्येत आत्म आत्मात्म दो हरि, आत्म आत्म दह हरि। भगवान अपने आप को दे देगा, आप हरि का आश्रय लो, उससे पहले हरि आपको अपने आप को अर्पण कर देगा। भगवान ने किसी को अर्पण किया, ऐसा कोई उदाहरण है क्या, जिसने भगवान का शरण लिया उस को भगवान ने अपने आप को अर्पण कर दिया। बलि महाराज बहुत अच्छा उदाहरण है, परंतु सबसे उत्तम उदाहरण है अर्जुन। भगवान का शरण पहले कहता है, परपा त्वाम परपनाम साधी माम, तो भगवान ने क्या कर दिया, अपने आप को अर्जुन को दे दिया, साथी बन गए, और क्या करेंगे। बलि महाराज शरणागति का, अच्छा वामन देव को अपने सर के ऊपर चरण रखने को कहा, यह तो आत्मनिवेदन है, ऊपर स्तर की भक्ति है, साधन से तो ऊपर है। तो गुरु का भगवत आश्रय, हरि आश्रय के लिए हरिजन का आश्रय लेना आवश्यक है, और हरिजन के आश्रय में भी भागवत धर्म सीखना अति आवश्यक है। और भागवत धर्म हुआ जो भगवान ने दिया है, भागवत धर्म भगवान ने दिया है, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ प्रहलाद महाराज की अपनी शिक्षाएं जो है अपने असुर बालकों का, वो यही है कि भागवतम धर्म धर्मान, ये भागवत धर्म को यहाँ सीखना चाहिए। भले जीवन थोड़ा है, लेकिन इससे बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अपना जो प्रश्न का उत्तर है, हरि का आश्रय कैसे लेना चाहिए और वन में क्यों जाके लेना चाहिए, वन में जाने का मतलब असल में वन में कब जाना चाहिए। एक महात्मा कहते थे कि आप गिनती कर लो, 50 के बाद गिनती करो, 51, 52, 53 वन में जाओ, वन में जाओ, वन में जाओ, 50 के बाद वन में जाओ, नहीं गए तो 60 की लगेगी लाट और फिर कहीं नहीं, कुछ नहीं करने वाला। तो वन में जाओ तो प्रभुपाद ने कहा वृंदावन, वन में जाना है तो वृंदावन सबसे अच्छी जगह है, जहां हरि भक्तों के संग में बैठकर हरि कथा कीर्तन करके हरि का शरण लेना है। और उसमें भी मुख्य अंग बार बार प्रभुपाद जी कहते हैं श्रवण सबसे शक्तिशाली अंग है, और श्रवण हमेशा साधु से होगा, गुरुजनों से होगा, और उनके श्रवण करने से जितना अधिक श्रवण करेंगे उतना हृदय शुद्ध होने लगेगा, और जितना हृदय शुद्ध होने लगेगा उस मात्रा में हरि की शरणागति। अब हम हरि का शरण ले, हरि भी तो स्वीकार करे ना कि हमने आपको स्वीकार किया है। यही बात बलि महाराज के प्रसंग में आती है, बलि महाराज अर्पण करें, सामने भगवान भी तो कहे ना मैंने आपको स्वीकार किया। अब भगवान कैसे कहेगा मैंने स्वीकार किया, तब यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस्य प्रसादा अनगति। गुरु प्रसन्न है तो हरि प्रसन्न है, हरि की प्रसन्नता गुरु की प्रसन्नता, हरि का आश्रय गुरु के माध्यम से, ये सिद्धांत है। तो हरि का आश्रय लेना चाहिए। हिरण्यकशिपु ने तो नहीं लिया, परंतु इतने बड़े राजा को उपदेश देकर पूरे विश्व में इस उपदेश को प्रहलाद महाराज ने विख्यात कर लिया कि साधन ये। वो जानते थे कि मेरा पिता नहीं देगा हरि का शरण, वन में नहीं जाएगा, परंतु इतनी बड़ी सभा में इतने बड़े व्यक्ति को ये कथा बता रहा हूं, ये कथा विश्व विख्यात हो जाएगी, और सामान्य जन भले मानस तो भगवान का शरण लेके अपने जीवन को सफल कर लेंगे ना। ये प्रहलाद महाराज का प्रचार है, ये महाजन की शिक्षा है, हरि का शरण लेना है। कितनी संकट है संसार में, वो ही जाएगा असल में हरि के शरण के लिए गुरु के चरणों में, जो अनुभव करेगा कि संसार बहुत दुखदाई है। जब तक ये नहीं समझ में आएगा तब शरणागति कच्ची होगी, तभी और फिर सुख और लाभ। इसी श्लोक के तात्पर्य में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद लिखती है, गुरु को सर्वस्व समझना चाहिए, सामान्य व्यक्ति तो समझना मूर्खता है, और गुरु को अपनी सेवा में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा लिखा है कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए गुरु को जैसे मुझे चाहिए ऐसे गुरु करे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो क्यों, कौन करेगा ऐसा, जो संसार से विरक्त होके नहीं आया है, जिसका अभी तक भोग की भावना बनी है, वो गुरु को फैशन के रूप में ले लेगा दुनिया को दिखाने के लिए, परंतु हरि को शरण लेने के लिए कहेगा भी नहीं। और वैसे मैं एक प्रश्न सामान्य पूछता हूं, कितने शिशु ने गुरु जी के चरण में जाके कहा है कि भगवान के प्रेम को कैसे प्राप्त करूं, भगवान का शरण कैसे लूं? बहुत नहीं के बराबर। अब सच मानोगे तो सत्य ये है, नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे, वैसे शरणागति हरि की शुरू कब होती है, बहुत सीधा सा श्लोक लिखा है, क्या लिखा है, जे काले शिष्य करे आत्म समर्पण से ही काले कृष्ण करे आप सम। तो दीक्षा की पद्धति शरणागति का शुभ आरंभ है, और भक्ति रसामृत सिंधु में ये चार बातें विशेष रूप से शरणागति के लिए साधन भक्ति के आरंभ में लिखी है, गुरुपाद आश्रयास्तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम विश्रमेण गुरु सेवा साधु वर्तमान वर्तनम। चार चीजें हैं, गुरुपद आश्रय लेना, श्री कृष्ण की शिक्षा और दीक्षा लेना, और विश्रमेण गुरु सेवा करना, और साधु वर्तमान जो परंपरागत मर्यादा है उसको पालन करना। तो ये शरणागति के कुछ विचार हैं जो आपके सामने रखे हैं। मैं समझता हूँ कि ये श्लोक बहुत चर्चा में आ चुका है, अच्छा है कि इसके ऊपर अब इष्टा गोष्ठी वाली चर्चा करें, मुष्टा गोष्ठी नहीं, इष्टा गोष्ठी वाली संवाद करें। वितंड और जलपना वाद के माध्यम से इसके मुख्य अंगों को 10-15 मिनट में समझने का प्रयास करें। कोई जिज्ञासा जो अभी तक प्रश्न इसके ऊपर हुए हैं या उनका विचार करना है, तो महाराज हैं ब्रह्माकांत जी, कल वैष्णव महाराज ने उनको पंडित की उपाधि दे दी है वैष्णव महाराज, तो अब इसके ऊपर शरण लेने हैं। आज हमने विषय तो यही था कि भगवान हरि का शरण कैसे लेना है, और हरि के शरण के लिए स्वयं प्रहलाद महाराज ने नरसिंह पुराण में अपने पिता को ये शब्द कहे, राम माधव कृष्ण इति समर भक्त्या आत्म शुद्ध्यै शरणं वर्ज सर्वेषां सर्व पाप क्षय करम। चार लाइन श्लोक की है, उसमें से मैं दो निकाली है जो मेरे को समझ में आई। राम माधव कृष्ण इति समर भक्त्या आत्म शुद्ध्यै, राम माधव कृष्ण इति ये नाम का स्मरण करो भक्ति से, और अपने आत्मा की शुद्धि के लिए शरणम व्रज और भगवान के शरण में जाओ। सर्वेशम सर्व पाप क्षय करम, जो सर्व प्रकार से सब पापों का नाश करेगा, सब दुखों का निवारण करेगा और परम सुख और प्रेम प्रदान करेगा, प्रेम भक्ति प्रदान करेगा। ये इसी यही प्रश्न विष्णु पुराण में है, यही प्रश्न नरसिंह पुराण में है, और नरसिंह पुराण में ये उत्तर दिया है, और विष्णु पुराण में शरण को न कहकर कहकर भक्ति का कि भाई वहां उत्तर ऐसा ही है परंतु शरण शब्द नहीं है। सो अब इस विषय के ऊपर चर्चा करते हैं, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा, हाँ प्रभु जी, दो दो प्रश्न हैं। हाँ जी, हाँ जी, शरणा शरणागति में हम आगे बढ़ रहे हैं, इसका पता कैसे लगे? शरणागति में हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं इसका पता कैसे लगे? आपका क्या राय है सबका? ओह, बहुत अच्छा प्रश्न उत्तर दे रहे हैं हमारे राधाकांत जी। भक्ति परेशानुभव, भक्ति परेशानुभव वृक्ति, और वो भोजन करते समय भूख जाती है, शक्ति आती है और संतुष्टि होती है, ऐसे भक्ति में शरणागति से ईश्वर की अनुभूति हो और विरक्ति हो। तीन चीजें हैं, एक तो ईश्वर की अनुभूति, एक विरक्ति, तीसरा क्या है? क्या एक संसार की विरक्ति, एक परेशानुभव भगवान की अनुभूति, तीसरा भी कोई, तीन तो होने चाहिए ना, उसमें तो सुधा निवृत्ति है, तुष्टि पुष्टि है, तो इधर तीसरा क्या है? एक तो भक्ति होती है, भक्ति भगवान का अनुभव और विरक्ति, ऐसे महाराज भक्ति परेशानुभव, तो भक्ति भी होती है, भगवान परम ईश्वर की अनुभूति होती है और विरक्ति होती है, तो इसमें विरक्ति कितनी हो रही है? कल हमने वैराग की एक परिभाषा बताई थी, वैराग की वैष्णव में परिभाषा है भगवान में विशेष राग, जितना भगवान में अधिक राग होगा उतना संसार से अपने आप वैराग होगा। तो भगवान के नाम में, कीर्तन में, भगवान के भक्तों के संग में, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा में जितनी रुचि बढ़ेगी उतनी शरणागति में हमारी उन्नति हो रही है इसका पता लगेगा। और हमारी भाषा में हम बोलते हैं, हमारी अपनी भाषा में, जब आपके रिश्तेदार मित्र कहें कि तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम समझना कि तुम शरणागति में अच्छे हो, ये हमारी परिभाषा है। जब तुम्हारे अपने सगे संबंधी तुमको कहे किसी काम के नहीं हो, तब समझना कि अब भगवान के काम का हूं, उससे पहले नहीं। आपका क्या प्रश्न था प्रभु? क्या शरणागति में क्या है? भगवान की शरणागति में दुख ही दुख मिलता है, सुख नहीं मिलता है।
सुख किसको मिलता है?
भगवान ने ये संसार बनाया, उसने लगा इसके ऊपर ठप्पा लगाया है दुखालियम, तो उसके अंदर सुख ढूंढने की मूर्खता क्यों करते हो? जिसने दुनिया बनाई उसने कहा ये है ही दुख वाला, उसमें सुख ढूंढ क्यों रहे हो? भगवान के शरण लेने में ऐसा नहीं है कि दुख सुख दुख नहीं आएंगे और सुख नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। शरणागति जिन्होंने ली है वो सुखी है, पर उनका नाम ही प्रहलाद है, प्रकृष्णेन रूपेन आह्लाद, पूर्ण रूप से आह्लाद में है, कभी दुखी नहीं होता है।
ये जो प्रहलाद
अरे भैया, इतना रोज दो सब्जी दाल चावल रोटी बिना मेहनत किए सुबह या कीर्तन करके मिलती है, इससे ज्यादा सुख भक्ति में और क्या मिलेगा बताओ? बाहर पूछो, कोरोना में सामान ही नहीं मिलता है बाजार में, और यहाँ सब कुछ तैयार मिलता है, इससे ज्यादा सुख और क्या मिलेगा शरणागति का? यह तो कच्ची शरणागति का इतना सुख है, पक्की शरणागति में तो महाप्रसाद मिलता है। और क्या सुख चाहिए? आपके सुख की परिभाषा क्या है? हमारा तो सुख का प्रश्न ये, आपको सुख कब चाहिए, कैसे चाहिए, कहाँ चाहिए? सुख कब चाहिए? सब सदा चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? कहाँ चाहिए? सब जगह चाहिए। किससे चाहिए? सबसे चाहिए। कौन है जो सब जगह है, सब में है, सब समय, वही आपको सुख देगा? ना आपका धन है, ना आपका रिश्तेदार है, केवल भगवान है, सब जगह है, सब समय है, वही सुख दे सकता है। सुख का दाता राम है, दूसरा नहीं कोई, और दूसरा कोई नहीं है। और ये भगवान की कथा कीर्तन जब तक सुनते हो तब तक सुख मिलता है कि नहीं? अब दूर नहीं जाओ, एक घंटा कथा में बैठते हो, कीर्तन के में बैठते हो, सुख होता है कि नहीं? ये प्रमाण है, सुख मिलता है यहाँ। हमने तो पाश्चात्य देशों में एक मिनट के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपाकर उनसे पूछा कि आपका अनुभव क्या है, 99% से ज्यादा सभी कहते हैं शांति मिली, एकांत का अनुभव हुआ, सुख की अनुभूति हुई। सभी लोग एक से, हम फिर कहते हैं सुबह से शाम तक आप काम करके मेहनत मजदूरी क्यों करते हो? बोला सुख के लिए। कभी मिला? बोला नहीं मिला। अभी एक मिनट में मिला? बोला हाँ मिला। इसका मतलब सुख तो आपके अंदर में है, सुख कहीं बाहर की चीजों में है नहीं, सुख आपके अंदर में है, और परमात्मा भी आपके अंदर में बैठे हुए हैं। उसके साथ आपका संबंध स्थापित हो जाए तो सुख आपको मिलेगा। इसी को तो भागवत में लिखा है कि वो अत्यंत सुखम अश्नुति, अति अधिक सुख का आनंद लेता है जब आत्मा का अनुभूति करता है। हमने शरणागति के अंदर अभी न आत्म साक्षात्कार किया है, न भगवत साक्षात्कार किया है, इसलिए उस सुख नहीं। सुख होता तो राजपाट छोड़ के मंडल पति थे हमारे आज गोस्वामी, यहां ब्रज में पेड़ के नीचे क्यों रहते? सुख नहीं होता ये तो सनातन गोस्वामी कचरे के डब्बे में क्यों रखते पारस मणि को? इस सुख की हमको अनुभूति नहीं हो रही है तो सांद्र आनंद विशेष आत्मा प्रेम के स्तर पे सुख आता है। वो सुख जो है वो सुख की तुलना दुनिया से की नहीं जा सकती, हम उस स्तर पे है नहीं। शरणागति सुख का, शरणागति सुख का ही साधन है, परंतु हम ले नहीं पा रहे। ले ले तो सुख है, कोई दुख नहीं है, भगवान रक्षक है तो फिर दुख काहे का है? आपका क्या प्रश्न था प्रभु? आप दुख को छोड़ो भाई, दुख भगवान को प्राप्ति के लिए हो तो ठीक है, तपस्या है तो दुख है, कोई बात नहीं, अच्छा है। ऐसा दुख बार बार आए, कुंती महारानी कहती है जिससे भगवान मिलता हो वो दुख खराब नहीं है। दुख भगवान अपने भक्तों को देते हैं सोने को कुंदन बनाने के लिए, चमकाने के लिए, विश्व में विख्यात करने के लिए, वो उनकी करुणा कृपा है, वो धोने के लिए, साफ करने के लिए देते हैं। भक्तों का दुख कर्मों का नहीं होता, भीष्म पितामह कहते हैं। वो भगवान काल के द्वारा अपने इशारे से उनको पक्का के परम विख्यात विश्व में करता है, इसलिए वो दुख भी। और वैष्णव तो कहते हैं जो कहे कि वैष्णव को दुख है बाहर से वो मूर्ख है, बाहर से जिसको दुख है अंदर में वो तो भगवान के प्रेम का आनंद ले रहा है। ये एक श्लोक चैतन्य भागवत से है जो लिखा है कि वो मूर्ख है जो समझता है कि वैष्णव दुखी है, वो अंदर में तो भगवान के प्रेम में बहुत सुखी है। हमने आपको एक उदाहरण दिया था, एक महात्मा का टांग टूट गया था, वो बेचारा अकेला बैठा था, कोई आया सेवक बोलो महाराज अकेले बैठे हो, बोलो तुमने अकेला कर दिया, पहले मैं भगवान के साथ बैठा था बड़ा सुखी था, तुम आया मुसीबत पैदा कर दी। इसका मतलब ये संसार के दुख की परवाह नहीं है, लेकिन भगवान के साथ अकेला बैठा था मजे में बैठा था, तुम आया और पूछने लगा दुनिया की बात टांग कैसे है, और मैं तो कर रहा था त्रिवरकम का ध्यान और तुम टांग का ध्यान कराने आ गए। तो ये मुसीबत है कि भगवान का भक्त को दुख कोई नहीं होता है, उसका दुख विलाप कर रहा है फिर भी। अब चैतन्य महाप्रभु रो रहे हैं क्या, दुख है क्या? ये जो व्रह वाला दुख है ये तो सुख से भी अधिक मीठा है, लेकिन इसका जिसको रस आ जाए ये ऐसा ये इसका भाव है। आपका क्या प्रश्न है प्रभु? कई लोग
कम उम्र वाले भी,
कम उम्र वाले आए हैं,
तो वो भी धाम का बन का जो प्रभाव है उनके ऊपर कैसे पड़ता है?
वो जो बूढ़े आए हैं उनकी सेवा के लिए है भाई, बूढ़ों को देखभाल कौन करेगा? इतने सारे सारे बूढ़े या इकट्ठे करोगे तो वो उनकी देखभाल कौन करेगा वो सेवा करके सिद्ध हो जाएंगे। प्रभुपाद जी ने लिखा है ना लास्ट इसकी लाइन में, हमने कृष्ण भावना आंदोलन में विश्व के समस्त पुरुषों को वृंदावन आने के लिए तथा यहाँ पर निवृत्त जीवन बिताने और कृष्ण भावना में उन्नति करने के लिए आमंत्रित करते हैं। प्रभुपाद ने सबको निमंत्रण दिया, यहाँ नहीं लिखा है बूढ़ों को, पहले लिखा है वान परस, लेकिन यहाँ लिखा है सब आओ। फिर भी नवयुवकों को सावधान ये करना है कि जो ग्रह को अंधकूप से निकले हैं वो आए, भोग साथ नहीं लाए वृंदावन में, नहीं तो रह नहीं पाएंगे। भोग को दूर सीमा से बाहर नमस्कार करके आए। पर नौजवानों की आवश्यकता है, बहुत आवश्यक। हाँ प्रभु जी,
माम
एकम शरणम,
माम सप्तक पर प्रभुपाद ने परिवर्तन किया कि मेरी भक्तों की शरण में आओ, और इसको प्रूफ करने के लिए एक ठाकुर जी एक श्लोक बोल करते हैं कि राम नाम रत्न प्रसाद अभी रसु प्रजवना प्रसाद है कि अपनी च पापा जल पास प्रयास है। तो जिन्होंने भगवान का आश्रय लिए हैं तो उनकी शरण में जाएंगे। प्रश्न है कि कौन आश्रय लिया है, हम कैसे समझेंगे?
अब बहुत अच्छा है, गिरी में प्रभु है क्या? डंडा का है, हरे कृष्णा। इनका प्रश्न क्या है कि माम एकम शरणम में प्रभुपाद ने लिखा है भगवान के भक्तों का शरण, और फिर जो श्लोक लिखा है भागवत से क्रात होना आंध्र पुलक आदि, वो भगवान के भक्तों का आश्रय लेता है तो शुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध्यंति प्रभु विष्णुवे नमः। और उसका प्रणाम है जितने सारे अफ्रीका के और रशिया के और यूरोप के लोग प्रभुपाद का शरण लिया वो शुद्ध हो गए, और हमारे सामने ये प्रमाण है। शुद्ध होने का मतलब है कि पहले तो उन्होंने वैष्णव पद्धति को स्वीकार किया, गुरु के शिक्षा को स्वीकार किया, और गुरु की शिक्षा को स्वीकार करके सेवा में लगे तो भगवान के नाम की शक्ति से और वैष्णव की कृपा से उनके जीवन में परिवर्तन आया, जो हमारे सामने प्रमाण इतना बड़ा प्रसिद्ध पड़ा है कि कि इसके लिए तो कहीं और जाने के देखने की जरूरत नहीं है कि प्रभुपाद के शरण लेने से, प्रभुपाद की कृपा से विश्व भर के लोग जो पुलकश से भी नीचे गिरे हुए थे वो सब शुद्ध हो गए और महात्मा हो गए। कौन? जिन्होंने आज्ञा का पालन किया, जिन्होंने सेवा में लगे, वो तो शुद्ध हो गए, पर जो नहीं लगे वो रह गए। तो सेवा में लगना, साधु का शरण लेने में तीन बातें हैं ना, शरणागति के साथ जिज्ञासा के साथ सेवा है। तो सेवा मुख्य रूप से आज्ञा का पालन है, सेवा की परिभाषा है आज्ञा का पालन। तो आज्ञा का पालन करने से वैष्णो की, और विष्ण वो जो वैष्णो है वो प्रभु विष्णु, उसकी अपनी शक्ति नहीं है, भगवान की शक्ति से वो ये कार्य करता है, वो भगवान की शक्ति से उसको शुद्ध करता है। तो वहां शुद्ध के लिए प्रभु विष्णु ने लिखा है, प्रभु विष्णु में है वो नाम लिखा है आगे, क्योंकि वो हृदय में भगवान को धारण करता है, गोविंद को हृदय में लेके घूमता है, वो तीर्थ है और जहां जाता है उसको पवित्र कर देता है। तो उसके हृदय में जो भगवान है, उस भगवान की कृपा से वो सबको सेवा में लगाने का सामर्थ्य रखता है और सबको शुद्ध कर सकता है। आपका अपना कोई और अच्छा राय हो तो सबके लिए शेयर कीजिए, हमको तो इतना समझ में आता है। जिसका हम आश्रय लें उसको हम कैसे समझें, मतलब गुरु को
नहीं,
हाँ उसको अपने उपदेशामृत में लिखा है, जो भगवान के भक्त भक्ति में ज्यादा लगाता है समझ लो कि वो भगवान का शुद्ध भक्त है। ये जो लिखा है उत्तम भागवत की परिभाषा, जो बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में ला सके। बाकी आपके प्रश्न का मैं इसलिए मुश्किल उत्तर है कि जो शुद्ध है उसको पहचान वही सकेगा जो शुद्ध होगा, जो स्वयं शुद्ध नहीं होगा तो शुद्ध को पहचानेगा कैसे? तो स्वयं शुद्ध नहीं होगा तो शुद्ध को पहचान नहीं पाएगा। इसलिए ये प्रश्न बहुत बड़ा अपने आप में मुश्किल है कि मैं शुद्ध कौन है, इसको कैसे पहचानूं, मैं ही शुद्ध नहीं हूं तो शुद्ध को कैसे पहचानूंगा? भाई डॉक्टर बात कर रहा है तो दूसरा डॉक्टर है तो उसकी बात को समझेगा, दूसरा सामान्य व्यक्ति तो नहीं समझेगा। तो शुद्ध को समझने के लिए शुद्ध होना पड़ेगा। इसलिए भगवान परम शुद्ध है, उसको समझने के लिए तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए भगवान कह रहे हैं, तब मुझे समझ पाएंगे जब तीनों गुणों से ऊपर उठेंगे, नहीं तो मुझे नहीं समझ पाएंगे। ऐसे ही शुद्ध भक्त को समझना, उसके प्रभाव से समझ सकते हैं कि उसने कितने लोगों को भगवान की भक्ति में लगाया, कितने लोगों का उद्धार किया, उससे पता लगता है कि इसमें सामर्थ्य है। और हम ऐसे दो प्रमाण हमने पढ़े, कहीं लिखा है शुद्ध भक्त के पास जाने से एक तो समय बीतता है उसका पता नहीं लगता है, काल ठहर जाता है, और आप उसके उससे मिलके वापस आओगे ना तो वैसे आप नहीं रहोगे पहले से, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। ये दो चीजें शुद्ध भक्त के पास जाने से, आपको समय बीतता है उसका उठने की मन नहीं करे, उधर बैठे रहे एक बात, दूसरा वहां से जब आए तो जीवन में परिवर्तन हो, वैसे न रहे जैसे पहले थे, तो समझ लो कि भगवान के किसी प्रेमी भक्त का कृपा हुआ है। ये साधु भाषा में बोलता हूं, ऐसे बहुत सी और जगह है जहां से भी लोग उठना नहीं चाहते हैं लेकिन वो नरक में जाने वाली है। संग करने से पता चलता है, बहुत अच्छी बात है। वैसे प्राय जो प्रणाली पुरानी ये है कि गुरुकुल में गुरु के पास जाके रहना है और उसी के संग रहना है तब जाके उसका शरण लेना है, तो वो जो मर्यादा मार्ग तो वही है। लेकिन अब कली काल में जो चल रहा है हमारे पास इंस्टीट्यूशनल मार्ग, इसमें भी हमारे को 6 महीने 12 महीने अपना जिस साधु से हमारे को शिक्षा लेनी है दीक्षा लेनी है उसका संग तो करते ही है।
और दूसरी प्रश्न,
हाँ जी,
कि जैसे भक्तिदान
सिखा शरणागति भक्त भक्तेरा प्राय प्रायण प्राण भक्तों का प्राण है, भक्तों का प्राण है। हाँ जी, कोई क्या क्या प्रश्न क्या है पूरा? हाँ, आपत्ति काल में गजेंद्र ने शरण लिया। और दोनों में अंतर है। हमारे भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं द्रौपदी का शरण अन्य अभिलाषिता सुनियम के अंतर्गत शुद्ध भक्तों में से बाहर नहीं है, क्योंकि द्रौपदी जो है बाहर नहीं है, उसकी शरणागति जो है वो प्रेम पूर्वक है, पर गजेंद्र की शरणागति जो है वो इसमें नहीं आती है। उसका कारण है कि वो भोग विलास कर रहा था, वो वहाँ कोई संकट उसका भगवान की भक्ति करते हुए या भगवान के भक्तों के संग में नहीं आया था, भोग विलास के बीच में आया था, इसलिए उसकी शरणागति को अन्य अभिलाषिता शून्यम में नहीं लेते हैं। ये तो भक्ति रसामृत में जब पढ़ाते हैं तो ये दो अलग अलग कर देते हैं दोनों को। है तो वो भी शरणागति, परंतु वो स्थिति उसकी शरणागति की अब एक कहा जाए कि मजबूरी की थी, वो पूर्व जन्म की याद थी, लेकिन द्रौपदी तो भगवान की बहुत प्रेमी भक्त थी, इसलिए वो बाहर नहीं है, उत्तम भक्ति से बाहर नहीं है उसको, और गजेंद्र उत्तम भक्ति से बाहर। इन श्लोक में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि कोई भी भगवान को अपनी बुद्धि से, ज्ञान से, पढ़ने से, पूजा के नहीं पा सकता है, जिसको भगवान वर्ण करते हैं वही भगवान को जान सकता है। तो भगवान किसको वर्ण करते हैं? जिसको अपने भक्त का संग देते हैं। भगवान किसी को वर्ण करे इसका पता कैसे लगेगा? उसको अपने भक्त का संग देंगे, ये भगवान के वर्ण का प्रमाण है। और जैसे भगवान ने अगर ध्रुव को वर्ण करना था तो नारद का संग दे दिया, अगर परीक्षित को वर्ण करना था तो सुखदेव को भेज दिया। तो इसलिए भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसको भक्त का संग मिलता है, तभी भगवान की शरणागति संभव है। अभी महाराज आपके दो आशीर्वाद के शब्द पूर्ण आहुति को, क्योंकि भूखा नहीं रखूंगा मैं इनको, नहीं तो ये इनकी शरणागति। आपका आशीर्वाद के शब्द महाराज।
हरे कृष्ण
महाराज।
प्रभु का प्रश्न है, उपदेश दिए कि शरणागति स्वीकार करना चाहिए, भक्त है उसका लक्षण क्या है? तो सार्वभौम प्रभु उत्तर दिए कि शुद्ध भक्त को लक्षण को समझना तो थोड़ा कठिन होता है, विज्ञान है वो भी नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, लेकिन उसके पहले ही लक्षण बतला दिए, श्लोक उद्धृत किए, तस्मा गुरु प्रपद देता जिज्ञासु से उत्तम सातवें पढ़े तो निष्कर्ष ब्रह्म के रूप समास है। तो इसमें शिष्य के भी योग्यता को दिया गया है और गुरु के योग्यता को भी दिया गया है, जिज्ञासु से उत्तम संसार के जिज्ञासा से हट करके सुख का जो सच्चा साधन है उसके विषय में जिज्ञासु, पीछे से जाने बहुत समय लगेगा, और गुरु का लक्षण दे रहे हैं कि साते परे निष्णा, उसको शब्द ब्रह्म में भी निष्णात होना चाहिए से बतला है कि तभी वह संशय का छेदन कर पाएगा, लेकिन यही पर्याप्त नहीं है, पर ब्रह्म में भी निष्णात होना चाहिए, पर ब्रह्म में निष्णात है तो भक्ति में लगा होता है, इसका लक्षण क्या रहता है? उपदेशामृत के प्रथम श्लोक, ये तो लक्षण तो वही दिया गया है, वहां से सिम्टम दिया गया उपसमास, यही शुद्ध भक्त का कम से कम एक लक्षण है इस परिप्रेक्ष्य। समझ में आ रही है कुछ बात? ठीक है,
धन्यवाद महाराज, आप पूर्ण आहुति कीजिए। हरे कृष्णा। जो श्रीमान रमाकांत जी आपके आग्रह के ऊपर हमने आज सेवा की, अब आप इसमें जो सुधार करना चाहें वो कीजिए।
बहुत अच्छा। सनातन का एक बहुत ही सरल सूत्र चैतन्य चरितामृत में है, उसमें कविराज गोस्वामी लिखते हैं, कृष्ण तवास्मि इति वदन वाचा। जो व्यक्ति सनातन होता है उसको बारंबार कहना पड़ेगा, हे कृष्ण मैं आपका, कृष्ण तव अस्मि इति वदन वाचा। 50 बार बोले, 100 बार बोले, बोलता ही रहना चाहिए। दूसरा, जैसा बोलता है तथैव मनसा विदन, मन में भी ऐसे ही सोचना चाहिए, हे कृष्ण हे गुरुदेव मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, करना चाहिए। ये हो गया वाणी से और मन से। तत् स्थान आश्रितं तन्मा, तनु से शरीर से, चाहे गुरु स्थान हो चाहे प्रभु स्थान हो, उसका आश्रय लेता है। कायम मनसा वाचा, वाणी से बार बार घूमता रहेगा, मन से ऐसा चिंतन करता रहेगा, एवं शरीर से तत् स्थान आश्रितं तन्मा, वो प्रतीक्ष करता रहेगा। इस प्रकार से शरणागत परम आनंद का अनुभव कर सकता। बाकी जो लोग प्रश्न कर रहे थे कि शरणागत हो गया उसका लक्षण क्या है, कई ज्ञानमय सिद्धांत है, इतने के मुख्य लक्षण यही है, शरणागत भक्त अपने लिए किसी फल की कामना नहीं करे, ये समझना बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। मान लीजिए हमने अपने आप को आपके चरणों में बेच दिया, फिर हम आपसे कुछ भी आशा नहीं करें। शरणागत दूसरी से होता है, जो भक्त होता है उसका मुख्य चिंतन होगा सुख दुख को समभाव में देखेगा, चाहे सुख है चाहे दुख है, हमारे गुरु जी भी जाए, जैसे वो अरुणी उपमन्यु, ये लोग शरणागत के एकदम बहुत ही ज्वलंत दृष्टांत प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसी शरणागति ना किसने देखा, आर्मी उस मेड़ पर लेते उपमन्यु गुरु के आज्ञा से कहीं जलन खा गए तो अभी भी गुरु के प्रति कोई ऐसी भावना नहीं। तो इस प्रकार से शरणागति के लक्षणों को देखकर के शास्त्रों से व्यक्ति अपना सकता
है। बहुत अच्छा रमाकांत जी, आप भगवान कृष्ण में मेरा हूँ, मन से चिंतन करे, सेवा करे, ये शरणागति की परिभाषा है। और फिर अपने उदाहरण में कहा गुरु की आज्ञा का पालन करें, ये सब भी गुरु के माध्यम से ही होना है। मुख्य बात शरणागति का साधन। प्रभुपाद जी से किसी शिष्य ने पूछा कि मैं आपको कैसे प्रश्न करूं, हम हाउ कैन आई प्लीज यू, प्रभुपाद शांत रहे, कहा जब कृष्ण प्रेम आपका जागृत हो जाएगा मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, जब आपके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाऊंगा मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। इसका मतलब गुरु की प्रसन्नता है कि शिष्य कृष्ण प्रेम में लग जाए, कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर ले। तो शरणागति का परम लक्ष्य कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, वो गुरु प्रसन्न तभी होता है जब हम उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, ये इसकी परिभाषा है। तो बहुत धन्यवाद शरणागति के लिए महाराज। दो शब्द आप आशीर्वाद को कहो तो फिर ये जाके प्रसाद खाएं, फिर दो शब्द फिर भी। ये तो रामचंद्र को, रामचंद्र ने जो वचन है भगवान मैं आपका हूं, एक बार कह दे तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। राम जी ने कहा है विभीषण के आने के ऊपर, बिल्कुल जी, सन्यासी का मनसा कर्मणा वाचा भगवान की सेवा में ही तीनों लगाने, और कोई काम नहीं है उसका। उसका शरीर भी चिन्मय हो जाता है ना, वो तो उसके इंद्रियां शरीर मन सब चिन्मय हो जाता है भगवान की सेवा के अतिरिक्त, और कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन यहाँ हिरण्यकश्यप को सन्यास शरणागति करानी है, ये बहुत मुश्किल है, बाकी सब ठीक है। प्रहलाद महाराज ने कह दिया, लेकिन उनके लिए नहीं कहा, कहा हमारे लिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय।